संडे स्पेशल डिस्कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 फरवरी 2024। ये इस महीने का दूसरा और इस साल का चौथा संडे स्पेशल डिस्कोर्स है। संडे स्पेशल डिस्कोर्स में आज आप सुनेंगे जीवन साथी की आत्मकथा का चौथा सीजन। निश्चित तौर पर जीवन साथी की आत्मकथा से जुड़े कई सीजन्स आपने सुने हैं, लेकिन इस बार का सीजन थोड़ा अलग है क्योंकि कुछ फंडामेंटल चीज़ें आपको इस बार जीवन साथी की आत्मकथा में सुनने को मिलेंगी। तो जीवन साथी की आत्मकथा का चौथे सीजन का आज आप पहला एपिसोड सुन रहे हैं। आमतौर पर देखा जाए तो जीवन साथी के लिए जीवन में ज़्यादा कुछ किया नहीं जाता। जिस तरह से आप जीवन की तैयारी में पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जैसे अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए एक लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है और हर पढ़ाई के अपने मोड़ होते हैं। स्कूलिंग ख़त्म होने के पहले बोर्ड एग्ज़ाम के बाद कॉलेज के तमाम सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेशन मिलता है कि आपका ये एजुकेशन पूरा यहाँ तक हुआ। फिर जॉब के लिए कुछ और ट्रेनिंग लेना है तो आप ट्रेनिंग भी लेते हैं, तरह तरह की चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बहुत तरह के प्रोजेक्ट आप करते हैं, फिर इंटरव्यूज़ और तमाम चीज़ें आप देते हुए जॉब तक पहुँचती हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं या करती हैं। पैसे कमाने के लिए इतना कुछ, उसी तरह और भी जीवन की दूसरी चीज़ों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन जीवन साथी को पाने के लिए आपको अपनी तैयारी एक अलग तरीके से ही करने को बताया जाता है। अगर अच्छी नौकरी हो तो अच्छी शादी हो जाती है, पैसे से ही सब कुछ आम तौर पर आजकल जांच लिया जाता है। रंग रूप रुतबा और रुपए के आधार पर जो पैमाना तैयार होता है, उसके आधार पर जो शादियां होती हैं, उसमें क्या कुछ देखने समझने और जीने को मिलता है, ये अच्छे से आप सभी महसूस करते हैं और देखते जानते हैं और समझते हैं। अपने घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में और तमाम जगहों पर ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जीवन की तमाम उपलब्धियां जो आप प्राप्त करते या करती हैं, आप वो सब कुछ जीवन साथी के साथ शेयर करने वाले हैं या वाली हैं। वो प्रॉपर्टी हो, आने वाली जो आपकी पीढ़ियाँ हैं, वो संतानें हो, आपके खुशी के पल हो, या जो कुछ भी आप उसमें जोड़ सकते हैं, वो सब कुछ। लेकिन क्या पैसा पर्याप्त है इन सब चीज़ों के लिए? और जो पैसा नहीं कमा रहे हैं उनका क्या? और यदि जीवन साथी में से कोई एक व्यक्ति घर संभाले और दूसरा पैसा कमाए तो इसमें नहीं कमाने वाले की क्या स्थिति है? कई बातें होती हैं इसमें जो कि पैसे से काफ़ी ऊपर हैं, जिसका पैसे से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन उनके विषय में ज़्यादा कुछ लोग समझना जरूरी नहीं समझते या समझती हैं। इन बातों को बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि आज के एपिसोड का नाम ही है जीवन साथी को पाने की तैयारी। नाम थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि ऐसी बातें नॉर्मली होती नहीं, और अगर ऐसा कुछ करते हैं लोग तो उनको एक अलग तरीके से देखा जाने लगता है कि अब ये ऐसी चीज़ों की भी तैयारी करने वाले हैं लोग। लेकिन एक तैयारी होनी ज़रूरी है। किस मामले में होनी ज़रूरी है, इस बात को समझना ज़रूरी है। और इन सब मामले में सबसे ऊपर है समय। शादी के बाद आपके पास जीवन साथी को समय देने के लिए समय होना ज़रूरी है। अब ये नहीं कि चलो बहुत सक्सेस हो गया, बहुत कुछ कर लिए, उम्र हो गई शादी की तो चलो शादी भी कर लेते हैं। वो चाहे आप जैसे करें, वो आपका अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, आप जिस हिसाब से भी उस रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन यदि शादी के बाद समय ना हो आपके पास उनके लिए, तो फिर एक दूसरे को समझने के मौके नहीं मिलते। और जब एक दूसरे को समझने के मौके नहीं मिलते हैं तो जो आपके एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो अधूरे हो जाते हैं, वो पूरे नहीं होते। ये ठीक वैसे ही बात है कि आपको हीरा तो मिल गया खदान से, लेकिन जब वो हीरा आपको हीरे की खान से प्राप्त होता है तो उसमें वो चमक नहीं होती, वो आपके आभूषण के रूप में काम नहीं आता, वो आपके ज्वेलरी में वो चमक नहीं पैदा कर सकता। तो आखिर क्या होता है कि फिर हीरे को हीरे की तरह पहचान मिलती है, जबकि कोयले की खदान में पड़ा हीरा भी हीरा ही है। तो उसकी पॉलिशिंग होती है, उसकी कटिंग होती है, तब जाकर उसमें वो चमक पैदा होती है और फिर वो बातें समझ में आती हैं जिसके लिए आप हीरे को पहचानते हैं और जानते हैं। ठीक ऐसी ही बातें हर इंसान के लिए है। जब कोई किसी के जीवन साथी के रूप में प्राप्त हो तो आपको उनके साथ क्या करना है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें लोग किए जा रहे हैं उसको करने से पीढ़ियाँ आगे बढ़ जाती हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, घर चलने लगता है, परिवार आगे बढ़ता है, लेकिन परिवार की शांति कैसी बनी रहे, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कुछ काम नहीं होता। तो इसके लिए करना क्या है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले इन सब को करने के लिए शादी के बाद आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। जैसे लोग हनीमून की प्लानिंग करते हैं और तमाम दूसरे खर्चों के लिए सेविंग करते हैं और उसके लिए मेहनत करके पहले से ही पैसा इकट्ठा करने लगते हैं कि शादी के बाद यहाँ यहाँ जाना है या ये यहाँ यहाँ कुछ कुछ करना है, और दूसरे खर्चों के लिए भी आप सेविंग करते हैं कि घर बसेंगे, घर बसाएंगे, घर में तमाम सामान खरीद कर लाएंगे, उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो कैसे कैसे क्या करना है। ठीक वैसे ही शादी के बाद में आपके पास में अपने जीवन साथी को समय देने के लिए समय कहाँ से निकलेगा, इसके बारे में सोचना आपका काम। ये उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है जो घर पर हैं, जो हाउसवाइफ का रोल करने वाली हैं, क्योंकि घर के काम करने के बाद निश्चित तौर पर समय मिल जाता है, लेकिन परिवार बड़ा हो तो उनको भी नहीं मिलता। तो उनको भी उस मैनेजमेंट के लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे वक्त निकालेंगे, कैसे समय निकलेगा। इन बातों को समझना देखना बहुत ज़रूरी है, और जब आप इस चीज़ को देखिएगा ना तो आपकी जो जीवन की वो पहलू है जहाँ आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं या खुद के स्किल के ऊपर काम करते हैं, वो सब एक अलग ही लेवल पर शेड्यूल होना शुरू हो जाएगा। उसकी रूटीन एक अलग ही तरह से आप तैयार कर पाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी इस मामले में हो रही है कि आपको एक टाइम के बाद में कुछ फ्री टाइम चाहिए। जैसे लोग रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं कि एक टाइम के बाद हमको रिटायर होना है, पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना। पैसा पैसे से बनता रहे वो एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए ऑफिस नहीं जाएंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे। ठीक वैसे ही शादी के बाद कुछ ऐसा वक्त आपके पास हो जो आप जीवन साथी के साथ में दे पाए। वो इसलिए नहीं कि आपको हनीमून पर जाना है, नहीं, एक दूसरे को समझने के लिए। निश्चित तौर पर शादियाँ फिक्स होती हैं या किसी तरह से भी रिलेशंस बनते हैं तो फ़ोन पर लोग बात करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, खूब बात करते हैं। इन बातों को समझना ज़रूरी है कि फ़ोन पर बात करने के लिए जो वक्त आपने निकाल लिया, शादी के बाद वो वक्त नहीं निकलता। फिर कुछ दिन के बाद वो बातें एकदम से बदल जाती हैं, वो लगता ही नहीं कि वो बातें हो रही हैं। इसके ऊपर स्पेशल एपिसोड आपको इस बार सुनने को मिलेगा कि ये क्यों होता है। इन बातों को समझना ज़रूरी है कि जब वक्त होगा तो एक दूसरे के बारे में समझेंगे, ताकि जो ये हीरा है उसे हीरा बनाया जा सके और उसे इस हिसाब से पॉलिश किया जा सके कि पूरी ज़िंदगी उसकी चमक से आपका जीवन रोशन होता रहे। और इसके लिए एक साथ बैठना ज़रूरी होता है, कुछ वक्त निकालना होता है, और कम से कम 2 घंटे का वक्त होना ज़रूरी है नव दंपतियों के लिए। जो नए नए शादीशुदा लोग होंगे उनके पास इकट्ठे 2 घंटे का वक्त होना चाहिए, और यदि संभव हो शादी से पहले बातचीत कर रहे हैं अगर आप, तो वहाँ भी अगर कुछ घंटे का वक्त हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग फ़ोन पे बात करने के लिए, अब ये समझ ले कि हम कह रहे हैं कि आपको शादी के पहले 2 घंटे फ़ोन पे बात करनी, वो नहीं। 2 घंटे का वक्त समझने और काम करने के लिए, कुछ चीज़ें वहाँ होंगी जिसके लिए 2 घंटे स्पेशली उस पर आप लोग देंगे। ज़रूरी नहीं कि एक साथ बैठ कर एक दूसरे के सामने ही दे रहे हैं, लेकिन वो वक्त होना चाहिए आपके पास में। जैसे कोई स्किल सीखते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, कुछ नई चीज़ों में आप काम करते हैं, तो उसके लिए कुछ पीछे की तैयारियां होती हैं, उस तैयारी के लिए वक्त निकालना होता है। ठीक वैसी चीज़ों के लिए वक्त निकालना, और इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इनको समझिएगा तो कई बातें समझ में आती हैं। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि जो ये हीरे की पॉलिशिंग होने वाली है, इसको पॉलिशिंग करने के लिए वक्त आपको देना पड़ेगा, और वो घंटे का, दो घंटे का होना जरूरी है। ये कैसे निकले, इसके लिए आपको अपने जीवन में लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर से समझ लीजिए, अपने जीवन में लंबी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन साथी कुछ हफ्तों महीनों के लिए नहीं आते, वो पूरी जिंदगी के लिए आते हैं, और पूरे जीवन आपको उनको समय देना होगा ना। जैसे नौकरी को आप पूरे जीवन समय देते हैं जब तक आपकी जॉब होती है, बिजनेस को देते हैं, उसी तरह यहां भी देना होगा। अब लोगों के दिमाग में ये बातें कई बार आती है कि क्या करेंगे इतना समय दे करके, सबको तो देख रहे हैं, लोग रहते ही हैं साथ में, निश्चित तौर पर सभी रहते हैं, लेकिन कई तरह की चीजें वहां मिसिंग हैं। वो क्या क्या चीजें हैं वो आने वाले एपिसोड्स में आप समझिएगा। तो इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि सबसे पहले आपको समय की जरूरत पड़ेगी। तो शादी के पहले यदि आपके पास में समय है तो जीवन साथी की प्राप्ति की जो तैयारियां हैं उनको समझनी पड़ेगी कि जब शादी आप करेंगे किसी के साथ में तो उनको आप क्या देने वाले हैं, आप उनके साथ में क्या शेयर करने वाले हैं। आप अपने स्किल्स शेयर करेंगे, उस स्किल से जो आपकी उपलब्धियां हैं उससे आप उनको जो कुछ होगा वो उपलब्ध कराएंगे, यानी कि अगर आपके स्किल्स आपको जॉब दिलाते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी उससे घर के खर्चे चलेंगे, जिससे उनके भी खर्चे चलेंगे। अब यदि आपका हेल्थ अच्छा है, आपकी फिटनेस अच्छी है, तो आप फिजिकली फिट रहेंगे, बीमारियां कम होंगी, तो बीमारियों में जो समय जाया होता है, जो तकलीफें होती हैं वो आप दोनों को झेलना नहीं पड़ेगा, उसमें वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। फिर तीसरी चीज है वो है मेंटली जो आप लोगों का एक बैलेंस होता है वो होना। अब ये क्या है, मतलब मेंटली एक दूसरे के साथ में जो थॉट प्रोसेस है उसमें कुछ समानताएं होनी जरूरी है। अब एक पूरब का है दूसरा पश्चिम का है, ये गलत हो जाता है। अब ऐसे में हर बात पर झगड़े, हर बात पर तनाव, शुरू में तो पता नहीं चलता लेकिन बाद में पूरी जिंदगी की झंझट बन जाती है ये बातें, क्योंकि ये जो मन है वो मिलता नहीं। तो मन के मिलन के लिए, मन के तालमेल के लिए, उसके संतुलन के लिए क्या करना है, इसके लिए मेंटली आपको तैयार होकर रहना पड़ेगा। और ये प्रिपरेशन बहुत जरूरी है कि कैसे ये करेंगे। निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ पहले से पता नहीं होता, जब आप शादी के बाद इन चीज़ों के ऊपर समझेंगे तो पता चलता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। और चौथी चीज़ है रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट वो रिस्पेक्ट है जो कि हर इंसान एक दूसरे से एक्सपेक्ट करता है कि मिले, लेकिन रिस्पेक्ट का अभाव तब होने लगता है जीवन में जब कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें खराब होने लगती हैं, ऐसी चीज़ों में कमी आने लगती हैं जो कि उस रिस्पेक्ट की बुनियाद है, जिसकी वजह से आप रिस्पेक्ट देने वाले हैं। तो ये चार चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आपका स्किल, जिसके थ्रू आपको मोनेटाइजेशन होगा लाइफ में, मतलब जिससे पैसा आने वाला है। दूसरा आपका हेल्थ, तीसरा आपका मेंटल जो आपकी एबिलिटीज़ हैं वो, और चौथा आपका रिस्पेक्ट। ये चार चीज़ों का होना ज़रूरी है। और ये चार चीज़ें यूं ही नहीं आती कि जैसे जैसे बड़े होंगे सब कुछ होता चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे सीखते चलेंगे वैसे ही सब कुछ विकसित होता चला जाएगा। अब इसमें एक बात आती है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सब कुछ हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है, हमारा तो काम इतना कुछ करना नहीं है, हम कमाएंगे भी और ये सब कुछ भी करेंगे। दूसरे तरफ दूसरे वो लोग सोचते हैं कि हम घर भी संभालेंगे और घर संभालने का ही काम जब करना है तो इतना कुछ क्यों सीखना और समझना है। इस बात को समझना जरूरी है कि ये सब कुछ आपको अपने लिए ही करना है। ऐसा करके आप किसी दूसरे को खुश नहीं रखने वाले या रखने वाली, आपकी निजी जिंदगी में ही इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब जैसे स्किल को देख लीजिए, लाइफ में जाना किधर है, करना क्या है, अब इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। और ऐसे कौन से स्किल्स आपको सीखने हैं जिसके सीखने से आगे चलकर आपको खाली वक्त मिलेगा, इसका चुनाव बहुत जरूरी है। अब ऐसे में यदि जॉब की बात हो तो ऐसा कौन सा जॉब करें कि जॉब के बाद में घर पे भी जॉब ना हो, आपके पास घर पर घर हो, फैमिली मेंबर्स हो, फ्यूचर में अगर बच्चे हैं तो बच्चे हो, पेरेंट्स हो, छुट्टी के दिन छुट्टी हो, या घर के जरूरी काम या अपने को वक्त देना हो तो वो हो। अब ऐसा नहीं हो कि आप पूरे समय में सिर्फ वही किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर यह सबके लिए नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके काम 24 घंटे उनसे जुड़े होते हैं, उनके ज़िंदगी में जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां दूसरों की जिम्मेदारियों का भी वक्त ले लेती हैं, और ये उनकी वास्तविकता है जीवन की कि वो परिवार को, बच्चों को और कई बार तो खुद को भी वक्त नहीं दे पाते हैं, वो अपने दूसरे काम काज में इतने व्यस्त होते हैं। तो ये डिस्कोर्स उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो जीवन में चौतरफा विकास करने के लिए, जीवन के हर पहलू में जीने के लिए जीवन साथी की तलाश में है। तो ऐसे कौन से स्किल्स हो सकते हैं जो आपको खाली समय दिला सकते हैं, ऐसे स्किल्स के बारे में सोचना पड़ेगा। और यदि कुछ करना आप जानते हैं, कुछ आप कर रहे हैं या जॉब है आपकी, तो उस काम में ऐसा क्या करें, ऐसा क्या जोड़ें कि आपके काम करने की स्पीड बढ़ जाए, क्षमता जो है वो विकसित हो जाए, जिससे कि आप समय को बचा पाएं। ठीक ऐसे ही जिनको घर संभालना है उनको भी ये समझना जरूरी है कि घर के जो काम काज हैं, किचन हो या घर की सफाई हो या कुछ भी अरेंजमेंट करना हो, घर में मैनेज करना हो, उनको कैसे करें कि कम से कम वक्त में बेहतर काम हो सके। और ये काम तकरीबन रोज करने को मिलता है, इसमें कैसे आप स्पीड लाएं, क्वालिटी लाएं, ये आपकी निजी जिम्मेदारी बनती है। इन बातों को देखना समझना पड़ेगा, और जब ऐसा कीजिएगा तो फिर आपको लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है कि कौन कौन से स्किल्स आपके पास होना ज़रूरी है जिससे जीवन बेहतर बनने वाला है, जिससे कुछ आप दे पाइएगा। जैसे जिनको जॉब करना है, जिनको पैसा कमाने की जिम्मेदारी उठानी है, उनको ऐसा स्किल डेवलप करना पड़ेगा, ऐसा एजुकेशन लेना पड़ेगा, ऐसी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा जिसके बदले में उनको जॉब मिल पाए, या उनको कोई बिजनेस में निकलना पड़ेगा ताकि वो बिजनेस कर सके। तो वहाँ भी कई तरह के स्किल्स होते हैं, उनको सीखना समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक ऐसे ही जो घर संभालने वाले हैं उनको खाना बनाने के लिए जो कुकिंग से रिलेटेड स्किल्स हैं, साफ सफाई से रिलेटेड जो स्किल हैं जो उस घर के साफ सफाई के काम में आती हैं, या और दूसरी बातें, परिवार के सदस्यों की देखभाल कैसे करनी है और साथ में खुद की जिम्मेदारियां कैसे उठानी है, तमाम स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और एक बात एकदम से समझने की ज़रूरत होती है कि सीखने की प्रवृत्ति जागृत रखनी पड़ेगी, तभी जाकर आप स्किल्स को लेकर के जीवन में बेहतर बन पाइएगा, इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना जरूरी होता है। तो जब स्किल्स के लिस्ट तैयार होंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जीवन जीने के लिए आने वाले भविष्य में जो जो काम करने हैं उनको करने से संबंधित कौन कौन से स्किल्स हैं। और कई बार तो आप पाइएगा कि कुछ स्किल तो आपके पास है ही नहीं, तो उनको फिर से आपको सीखना पड़ेगा, वो स्किल्स आपको जानना जरूरी होता है। जब वो स्किल्स आपको आएंगे तो फिर आगे चलकर आप उनको यूज करके जीवन में वक्त निकाल पाएंगे या निकाल पाइएगा। इन चीज़ों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहला हो गया आपका स्किल, अब दूसरे में आते हैं, वो है आपका हेल्थ। अब हेल्थ को लेकर के आप कितने जागरूक हैं ये तो आपके शरीर से ही आपको समय समय पर पता चलता रहता है, आपका वजन कितना है, आप शरीर को कैसे देखभाल कर रहे हैं या कर रही हैं, खान पान, पानी, हवा, जो आपका भोजन है वो सब कुछ कैसा है, खाने का तरीका क्या है, उनको कैसे आप देखते हैं या देखती हैं, मतलब भोजन का उद्देश्य स्वाद है या सेहत है, ये सब कुछ देखना समझना जरूरी है। जब ये सब कुछ आप देखिएगा और समझिएगा तो आपको आपके शरीर के प्रति एक समझ पैदा होती है, और फिर आप अपने भोजन, पानी, हवा को ग्रहण करने के तरीकों में बदलाव लाने प्रारंभ कर देते हैं या कर देती हैं, जो कि सेहत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब जब ऐसा होगा तो आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा, साथ में सोने जगने के जो आपके तरीके हैं इन सब में भी आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी ताकि शरीर पर्याप्त आराम प्राप्त कर सके और अगले दिन जिंदगी जीने के लिए खुद को तैयार रख सके। इसके अलावे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और यदि और भी कुछ प्रैक्टिसेस आपको लोग करते हैं या जानते हैं तो उसको भी करना पड़ेगा आपके शरीर को ठीक रखने के लिए। यह सेहत से जुड़ा हुआ मामला होता है और सेहत की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। कई मामलों में बहुत छोटी उम्र में ये पता नहीं होता, लेकिन जब बड़े होने लगते हैं तो ये जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ती है और खुद के लिए आलस त्याग कर इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो ये दूसरा पड़ाव हुआ आपका सेहत। अब तीसरे में आते हैं हम लोग और तीसरा है आपका मन। तो तीसरे में जो आपकी मेंटल एबिलिटीज हैं वो कैसी हों। अब तो मेंटली आपको ग्रो करने के लिए, मेंटली आपको स्टेबल रहने के लिए, मेंटली आपको पीसफुल रहने के लिए, जो आपकी आंतरिक शांति इनर पीस है उसको मेंटेन करने के लिए जैसे शरीर के लिए वक्त देना जरूरी है, उसी तरह मन को भी समय देना पड़ेगा। थोड़ा वक्त तो निकालना पड़ेगा, वो आप आधे घंटे ही निकालिए लेकिन निकालिए। अब ये जो आधे घंटे का वक्त आपका निकलेगा और मन के प्रति जब आप जागरूक बनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, तो कई तरह के प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आपको समझ में आने लगते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या है। आप ओवरथिंकिंग करने वाले हैं या करने वाली हैं, ब्लाइंड फेथ वाले हैं या कैसे हैं, निगेटिविटी ज़्यादा है मन में या पॉजिटिविटी ज़्यादा है मन में, किस तरह से आपका मन काम करता है, इन सब के बारे में आपको पता होता है। जब ये सब कुछ आपको समझ में आने लगता है तो आप अपने मन के बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं कि आपका मन एक्चुअली है क्या, उसका फंक्शन कैसा है। अब ऐसे में जब आप खुद के मन को जानिएगा तभी दूसरे के मन से ताल्लुकात रख पाइएगा, उससे समझ पाइएगा। अब इससे रिलेटेड कई बातें ऐसी होती हैं जिनको देखना समझना ये आपकी तो पूरी की पूरी निजी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वहाँ तक तो कोई पहुँचता नहीं, तो उनको देखना, उसकी साफ सफाई, उसके बारे में समझना, उनको इस्तेमाल करना, ये सब समझना आपकी निजी जिम्मेदारी बन जाती है। अब ये अनियंत्रित मन कितना चंचल है, क्या क्या आप सोचते हैं, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मन के मालिक बन जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है कि आपके पास स्मार्टफोन है, आपको यूज़ करने आ गया, लेकिन आपको पता नहीं कि ये बना कैसे, काम कैसे करता है, ख़राब होगा तो कैसे इसको रिपेयर करेंगे, आप उसके एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। ये माइंड चैप्टर की बात नहीं हो रही जो इकोलॉजी में बताया जाता है, ये नॉर्मली आमतौर पर जीवन में मन के प्रति जितनी जागरूकता होनी चाहिए वो। और चूंकि मन के बारे में कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं मिलता तो थोड़ा सा मन के बारे में खुद को अवेयर करना और एजुकेट करना, मेंटल एजुकेशन लेना ये ज़रूरी होता है। जब आप अपने मन के प्रति जागरूक रहेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि हर किसी का मन अलग अलग तरीके से विकसित है। अब एकदम से अलग विकसित मन के साथ में पूरी ज़िंदगी बिताना ये अपने आप में आसान काम नहीं है। तो ऐसे में जो अलग मन है जब वो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में बताएंगे, तभी जब एक दूसरे के मन के बारे में हम लोग जानेंगे। जब आप अपने मन के बारे में जानिएगा तभी बता पाइएगा, जैसे आप फिजिकल कई तरह की चीज़ें बता पाते हैं कि आपको कैसा रंग पसंद है, कैसा खान पान पसंद है, कैसे कपड़े पसंद है, किस तरह की मूवी पसंद है आपको, कैसा म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है सुनने में, ठीक वैसे ही कैसे थॉट प्रोसेस आपको भाते हैं, किस तरह की इमेजिनेशन में आप पड़ जाते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दुख देती हैं, सताती हैं, मन के बारे में भी आप शेयर कर पाइएगा और उधर से भी समझ पाइएगा। निश्चित तौर पर इतनी बातें हो सकता है आप तैयार कर ले और सामने वाला बिल्कुल भी ना जाने या उसको पता ही ना हो, उनके ऐसा भी कुछ होता है, तो ये सब कुछ बताने और समझाने के लिए आप तैयार तभी होंगे जब इसकी महत्ता को, इसके महत्व को, इसके इम्पोर्टेंस को आप अपने लाइफ में फील कर पाइएगा, ताकि दूसरे को भी उससे लाभान्वित करवा पाएं। तो ऐसे में जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो एक दूसरे के साथ में ये सब कुछ बातें जब होंगी तो आपको पता चलेगा कि सामने वाले का मन तन यानी उनका सेहत स्किल्स ये सब का क्या है, इस सब के साथ उन्होंने जीवन में क्या किया है, इन सब के साथ जीवन में वो कैसे वक्त बिताए हुए हैं, किनको किनको उन्होंने सीख रखा है, कैसा कुछ करना है, क्या बाकी है, ये सारी चीज़ें। और हो सकता है उस समय एक नई लिस्ट बनानी पड़ जाए कि एक्चुअली जीवन जो जीने वाले हैं उसमें क्या क्या स्किल लगने वाला है और हम लोग के पास कौन कौन सा स्किल है और कौन कौन सा नहीं है, तो जो नहीं है उसको कौन सीखेगा, दोनों में से जिसको पसंद होगा वो सीखेंगे। लेकिन ये इतनी जो सुलझी हुई बात है तभी संभव है जब आपके पास एक दूसरे को समझने के लिए वक्त होगा और ये सब कुछ करने की तैयारी होगी। जैसे घर बनता है, मकान बनता है, तो उसके लिए पहले जमीन की तैयारी होती है कि कहाँ खरीदें, उसके बाद घर कैसा बनाएंगे, बजट क्या है, बजट के हिसाब से कमरे कैसे होंगे, कितने फ्लोर का बनाएंगे, किसमें कौन रहेगा, किधर क्या रखना है, किधर क्या डिज़ाइन करना है, ये तमाम प्लानिंग होती हैं। उसी तरह जीवन को जीने के लिए जो जिम्मेदारियां हैं उसको कौन कैसे किस तरह से निभाएगा इसकी भी प्लानिंग जरूरी है, जो कि नहीं होती है। आमतौर पर एक ही प्लानिंग होती है, किसको किचन और किसको पैसा, कौन किचन संभालने वाला है और कौन पैसा कमा कर लाने वाला है, बाकी सारी चीज़ें जैसे तैसे चलती हैं जीवन में और जिंदगी भी जैसे तैसे ही गुजरने लगती है। वहाँ ये बातें क्लियर होती हैं, ये सब कुछ का मामला क्या है। और जब ये सब कुछ अच्छे से मैनेज होगा ना, तो आप पाइएगा कि रिस्पेक्ट अपने आप जनरेट होने लगता है एक दूसरे के प्रति। जो रिस्पेक्ट है वो अपने आप ही आप एक दूसरे को देने शुरू कर देते हैं, क्योंकि बुनियादी चीज़ों पर काम होना शुरू हो जाता है। और जो व्यक्ति इतनी तैयारी के साथ जीवन साथी की तलाश में लगते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ करके आप उनको ढूंढते फिर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये तैयारियां हैं। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं और स्कूल उस्कूल भटक रहे हैं, आपको पढ़ाई करने के साथ में एग्ज़ाम के डेट्स मिलते हैं। ठीक वैसे ही जब जीवन साथी की तलाश होगी तो कोई ना कोई मिलेगा, और उसके साथ ये सब चीज़ें आप लेकर जब बैठिएगा, बातें होंगी, तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे जीवन साथी की ज़रूरत है। और जो जीवन साथी बनने के लिए लोग आपसे मिलने वाले हैं या मिलने वाली हैं, उनसे जब बातें शेयर कीजिएगा तो वो उसमें खरे उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, या खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, उनका बाय नेचर किस तरह का बनावट है, वो आपके टाइप के हैं कि नहीं है, ये बातें कुछ समझना जानना ज़रूरी है। इन बातों को ध्यान में रखिए, क्योंकि आजकल फैमिली फ्रीडम भी कुछ मिल जाता है, और जब आप ऐसे स्किल्स पर शुरू से काम करेंगे तो परिवार वालों को भी दिखता है कि आपकी एक तैयारी है जीवन की, कि जीवन को संभालना कैसे है। जब ये सब कुछ होगा तो रिस्पेक्ट जनरेट होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि फिर एक दूसरे को साथ देना, बातों को समझना, गलतियों को नहीं दोहराना, ऐसी बातें सामने आने लगती हैं, और फिर बात बात पर एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये तमाम चीज़ें रिस्पेक्ट के रूप में दिखती हैं। तो ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपके जीवन में शादी से पहले हो। और यदि शादी हो गई है और फिर आपको ये डिस्कोर्स सुनने का मौका मिला है, तो कोई बात नहीं है, अभी से ही इन चारों को ग्रो करना शुरू कीजिए, इनके बारे में सोचना शुरू कीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए। क्योंकि जीवन को बस लेकर के चल देना ये उचित नहीं, क्योंकि फिर कब क्या होगा नहीं होगा ये तो पूरी ज़िंदगी आपको नहीं पता चलने वाला। लेकिन मोटे तौर पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेंगी, जैसे खाना खाना ही है तो खाना बनाना पड़ेगा, ये तो पता है, तो पड़ेगा तो कौन बनाएगा, जो बनाने वाले हैं उनके स्किल्स पे काम होता रहना चाहिए। अब ये नहीं कि जो घर से सीख कर आ गए वही बना रहे हैं और पता नहीं है तो अब उसमें एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें कभी कुछ कर दिए कभी कुछ कर दिए, और चूंकि सीखे नहीं हैं, जानते नहीं हैं, सिखाने वाला कोई नहीं है और सीखने के मौके कोई दे नहीं रहा, तो अब ऐसे में ना डेवलप हो पा रहे हैं ना कुछ उसमें जोड़ पा रहे हैं, अब जो बन रहा है वो भी खराब है, तो ऐसे में सीखने वाले को सीखने को मिलेगा नहीं और खाने वाले को भी बेहतर मिलेगा नहीं, तो ऐसे में ये जब बेहतर नहीं होगा तो दोनों आजकल करते करते किसी दिन झगड़ा कर लेंगे, चीज़ें खराब हो जाएंगी। फिर इन बातों को समझना पड़ेगा, और ये समझेंगे कब, इनको समझने और विकसित करने और इनके ऊपर चर्चा करने के लिए ही तो 2 घंटे का वक्त आपको होना जरूरी है शादी के बाद में।